हेलो दोस्तों, मैं आरजे श्वेता लेके आई हूँ कुछ खास और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। तो दोस्तों, आप जैसा कि रोज ही सुन पा रहे होंगे, किसी ना किसी डिपार्टमेंट से हम आपकी बात कराते हैं, सुनाते हैं उनके कुछ अच्छे अच्छे टिप्स। तो दोस्तों, जैसा कि रोज कुछ ना कुछ खास होता है, हमारे स्टूडियो में कुछ खास मेहमान आते ही आते हैं। तो आज आई हैं हमारे बीच एक खास मेहमान, जो हैं नारी ज्ञान असली पीजी कॉलेज महिला डिग्री कॉलेज की राजनीतिक शास्त्र की एचओडी मैम, जिनका नाम है डॉक्टर नीतू सिंह मैम। तो नीतू सिंह मैम जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हं कि आज आप हमारे समक्ष आई और कुछ बोलने का प्रयत्न करेंगी। तो मैम, आपको हमारे रेडियो ज्ञानश्री की तरफ से मोस्ट वेलकम, हम आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और चाहते हैं मैम कि जैसा कि आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो चाहेंगे हम कि मैम आप कुछ राजनीतिक विज्ञान के बारे में बताएं कि इसका स्कोप क्या है। मैम,
थैंक यू श्वेता। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर बच्चे राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो बच्चे UPSC की तैयारी कर IAS IPS PCS बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वे सिविल सर्विस की तैयारी करें, और अगर वो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो उनके लिए और बच्चों की अपेक्षा तैयारी करना आसान हो जाता है। अगर बच्चों का इंटरेस्ट पत्रकारिता की तरफ है तो बच्चे पत्रकार भी बन सकते हैं। राजनीति विज्ञान पढ़ने के बाद लॉ यानी आप LLB की पढ़ाई भी कर सकते हैं, और वकील, लीगल एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र आदि भी बन सकते हैं। साथ ही राजनीति विज्ञान से MA करने के बाद PGT करके टीचर बन सकते हैं, नेट करके रिसर्च भी कर सकते हैं, और BEd करके भी टीचर बन सकते हैं। आप देखेंगे कि जगह जगह बहुत सारे कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं जो बच्चों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। अगर आपको विषय का अच्छा ज्ञान है तो वहाँ बच्चा पढ़ाकर अच्छा खासा कमा सकता है, और बच्चों के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो बच्चे वो रास्ता चुन सकते हैं।
ओके मैम, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि वाकई में हम पॉलिटिकल साइंस से ये कर सकते हैं। तो मैम, ये तो रही स्कोप की बातें। अभी जहाँ तक मेरा व्यू है कि हम लोगों को ये जानकारी कम होती है, हमारे लिसनर्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मैम, हम चाहेंगे कि कॉपी और किताब या क्लास के सिलेबस में तो हमारे होता ही है मौलिक अधिकार, लेकिन हम एज अ बस उसको रट लिए, पढ़ लिए, क्वेश्चंस लिखाए, पास हो गए, लेकिन अगर पूछा जाए कि हमारे राइट्स क्या हैं तो वो लोग नहीं फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। तो मैम, हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस मंच पर आए हैं, रेडियो में आए हैं, तो आप कुछ रूबरू कराएं कि मौलिक अधिकार क्या है और ये क्यों आवश्यक है, हमारी लाइफ में क्या है इनका रोल, क्या रोल प्ले करते हैं, तो रेडियो से सुनेंगे लोग, जागरूक होंगे और अप्लाई भी करेंगे। मैम, तो प्लीज बताएं मौलिक अधिकार क्या है, ये क्यों आवश्यक है।
बिल्कुल श्वेता, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान एक विशेष अधिकार है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भी कह सकते हैं इसको। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक किया गया है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य या सरकार के द्वारा भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यदि के भी द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी श्वेता, कि सारे मुकदमे सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, पहले उनकी अपील जिला न्यायालय में की जाती है। वहाँ से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और वहाँ का फैसला आने के बाद आप उससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने लगे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि पहले जो मूल संविधान बना था उसमें 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। अब उसको संपत्ति को के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया है। इसलिए अब जो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब वो घटकर 6 रह गए हैं। मैं वो 6 मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसमें हर तरह की समानता की बात की गई है। दूसरा बताना चाहूँगी कि ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक इसको उल्लेख किया गया है। इसमें आप अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, हर तरह के स्वतंत्रता की बात बताई गई है। जो तीसरा है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका अनुच्छेद जो है वो 23 और 24 है। इसमें बाल श्रम पर रोक लगाया गया है, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों, कारखानों, जोखिमपूर्ण कार्य करने से रोका गया है। जो चौथा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। इसमें आप अपने अंतःकरण के अनुसार, जो आपकी अंतरात्मा कहे, उस हिसाब से कोई भी धर्म अपनाना चाहें, पूजा पाठ का जो भी तरीका हो, आप उसको कर सकते हैं। पांचवा जो अधिकार बताया गया है वो है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है, उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है। और आखिरी मैं बताना चाहूँगी जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका जो अनुच्छेद है वो 32 है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार के लेख या रिट कह सकते हैं इसको जारी किए जाते हैं। इससे व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सकता है। ये 5 तरह के जो रिट हैं मैं बताना चाहूँगी। पहला जो है वो प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध है, चौथा उत्प्रेषण है और 5वां अधिकार प्रेक्षा। ये लेख के द्वारा व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सकता है।
ओके मैम, बहुत बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी हैं। आई होप कि हमारे जितने भी लिसनर्स होंगे वो इसको अप्लाई करेंगे और सुनेंगे और अपने अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे। तो मैम, अब हम चाहेंगे कि चलते चलते आप कुछ भी जो आपको लगे कि रेडियो के माध्यम से हमें प्रसारित करना है, जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है, तो कुछ बोलना चाहेंगी मैम?
जी बिल्कुल श्वेता, मैं 2 शब्द बड़ी मैम के लिए कहना चाहूँगी। डॉक्टर कृष्णा सिन्हा मैम के लिए, मैम का जो काम करने का जज्बा था वो देखने लायक था। मैम कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती थी। ज्ञानस्थली परिवार को उन्होंने अपने परिवार की तरह समझा। उन्होंने कभी डांटा तो कभी प्यार भी किया। उनको ज्ञानस्थली से इतना प्यार था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञानस्थली के लिए समर्पित कर दिया। ज्ञानस्थली को आगे बढ़ाने में जी जान से जुटी रहीं। उन्होंने महाविद्यालय को अपने बच्चे की तरह पाला है। उनके संघर्ष को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने ज्ञानस्थली के रूप में एक पौधा लगाया था जो आज एक विशाल छायादार वृक्ष बनकर तैयार हो गया है। मैम को अगर ज्ञानस्थली की आयरन लेडी कहा जाए तो गलत ना होगा। मैम के उसी पौधे से आज पूरे ज्ञानस्थली स्टाफ को छाया मिल रही है। ज्ञानस्थली ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, मैं यही कामना करती हूँ। थैंक यू श्वेता।
थैंक यू सो मच मैम। आपके आरसी वचन सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और आपके व्यूज़ मैम के बारे में सुन के भी बहुत अच्छा लगा। तो मैम आप आईं, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और ये चाहते हैं आपसे, एक रिक्वेस्ट करते हैं मैम कि आपको जब भी टाइम मिले तो आप आएँ हमारे लिसनर्स के लिए कुछ नए नए लेसन्स लेके, कुछ अपनी टिप्स लेके मैम। तो फिर सुनते रहिए और जुड़े रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM रेडियो से।
थैंक यू।